उसी के अनुसार हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन में बिना श्रद्धा के हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। श्रद्धा जहाँ एक ओर हमारे अंदर अहंकार और ममकार को नष्ट करती है, वहीं हमारे भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और जब हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है, तब हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के रास्ते पर निर्भय होकर के, निशंक होकर के निकल पड़ते हैं। फिर जब हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो उन चीज़ों की आकांक्षा क्यों करें जिनकी आकांक्षाओं से मेरा जीवन पतित हो रहा है। तब ऐसी आकांक्षाएं भी हमारी घट जाती हैं जिन आकांक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में हमारा पतन होता है। इतना ही नहीं, हम जब सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर देहाशक्ति घटती चली जाती है और आत्मप्रेम बढ़ता चला जाता है। कोई कितने भी हमें लालच दे, लेकिन अपन कहते ना कि तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने का है। कोई मुझे सच्चे रास्ते पर चलते हुए कितने भी प्रलोभन क्यों ना दे, कितने भी डाइवर्शंस क्यों ना आए, मैं अपने उस जो एक सोचे हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता हूँ। ऐसा विवेक मेरे भीतर जागृत हो जाता है जब आत्मविश्वास और श्रद्धा जागृत होती है। और इतने ही नहीं, फिर दोष देखने की हमारी रुचि नहीं रह जाती। अगर कभी साधर्मी के भीतर दोष दिखाई देते हैं, तो उनको दूर करने का भाव जरूर पैदा होता है, और अपने भीतर भी जो दोष हैं उनको दूर करने का भाव होता है। कोई अगर सच्चे रास्ते पर चलते हुए गिर जाता है, या स्वयं भी हम जब व्रत नियम इत्यादि सच्चे रास्ते पर चलते समय ग्रहण कर लेते हैं, उनमें कोई चूक हो जाती है, तो हम उनको जैसे संभाल लेते हैं, ऐसे ही अपने साधर्मी को भी हम संभालने की हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं। हम उसे विचलित नहीं करते मार्ग से, अगर वो विचलित होने लगता है तो उसे संभाल लेते हैं। ये बात कठिन सी चीज है। असल में ये तब संभव होती है जब हमारे मन में और ऐसा श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए कि वास्तव में जो धर्मात्मा है उसी के माध्यम से तो धर्म आगे बढ़ता है। और अगर मेरा धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, तो फिर मुझे धर्मात्मा के प्रति भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि वो अगर कभी धर्म के मार्ग से विचलित होने लगे तो उसे हम संभालें। और इतना ही नहीं, उसके प्रति हमारे मन में वात्सल्य भी होना चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में एक अनुराग होना चाहिए। ये हमारे भीतर सारी चीज़ें एक एक करके आती चली जाती हैं। इनको लाने का कहीं से प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि ये सब सोच सोच के करना पड़ेगा। ये सब जैसी हमारे मन में श्रद्धा आती है, जैसी हमारे मन में आत्मविश्वास जागृत होता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारी गुणवत्ता हमारे भीतर आती चली जाती। लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि सम्यक दृष्टि के ये गुण अपने आप उसके भीतर प्रकट होते हैं। किसी में ये गुण हो और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा तो संभव है, लेकिन किसी में सम्यक दर्शन हो और ये गुण ना हो, ऐसा कभी संभव? सम्यक दर्शन के साथ इन सारी चीजों का, दृष्टि की निर्मलता के साथ इन सारी चीजों का होना अनिवार्य है, ये होती ही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने जीवन का संस्मरण लिखा कि एक दिन वे बहुत घबराए और बहुत बेचैन से अपने मित्रों से कहते हुए पाए गए कि आज मैं बहुत चिंतित और घबराया हुआ हूँ, मुझे ये खबर मिली है कि मेरे पिता नहीं रहे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ छोटे से गांव में पैदा हुए और वहाँ 12 बरस की उम्र में अपने पिता और सारे परिवार को छोड़ करके और शहर में आ गए थे, जहाँ की उन्होंने अपनी योग्यता से बहुत बड़ा पद भी प्राप्त कर लिया। 62 साल की उम्र में जब एक दिन उनको यह समाचार मिलता है कि उनके पिता नहीं रहे, तो चिंतित हों और घबराए हुए मित्रों ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप, तो 10-12 बरस की उम्र में पिता के छोड़ करके आए थे और बिना पिता के, और 62 साल तक आपने गुजार दिए, कभी आपने बेचैनी और घबराहट महसूस नहीं की? आपके लिए पिता की एग्जिस्टेंस का कोई महत्व भी हम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब पिता की मृत्यु का समाचार मिला है और आप स्वयं 62 वर्ष के हो गए, तब आप घबराए और बेचैन से, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया कि मैं पिता को छोड़ के भले ही आ गया था, पिता के पास मैं 12 वर्ष की उम्र से 62 वर्ष तक कभी नहीं गया, न मैंने उन्हें देखा, न कभी उनसे बात की, लेकिन मन के भीतर कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि अगर कहीं चूक जाऊंगा, अगर कहीं गलत हो जाऊंगा, तो पिता अभी जीवित हैं, वो मुझे संभाल लेंगे। लेकिन आज जब ये मालूम पड़ा है कि पिता नहीं रहे, तब तो अपनी भूल चूक अब मुझे ही संभालनी पड़ेगी, मैं अपने को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, इसलिए घबराया हूं, इसलिए बेचैन हूं। बताइए, ये सांसारिक सी घटना हमारे जीवन को क्या प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा और विश्वास आखिर है कैसी चीज? वो हमें एक भरोसा देती है कि हम अकेले ही सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, हमसे पहले और बहुत लोग इस सच्चाई के रास्ते पर चले हैं और उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया, हम भरोसा रखें उनका, वे हमारे साथ हैं, उनकी प्रेजेंस हम फील करते रहें और फिर सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ें, तो हमारे भीतर ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आना शुरू हो जाती हैं। आज अपन इसी श्रद्धा और विश्वास से अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली प्रक्रिया में एक बात पर और विचार करते हैं कि स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य मविलम्बते। एक जीवन अच्छा बनाने वाले के जीवन में अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, साधर्मी सो गोवच्छ प्रीति सो, जैसे कि गाय और बछड़े की प्रीति होती है, वैसी प्रीति अपने साधर्मी के प्रति होनी चाहिए। इसी बात को आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि स्वयुत्थान प्रति, स्वयूथ मतलब साधर्मी, अपने समान आचार विचार वाले, अपने समान सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने वाले, ये सब स्वयूथ कहलाएगा। हमारा अपना ग्रुप, हमारा अपना समूह, यूथ मतलब समूह, कैसे लोगों का समूह जिसमें सब समान आचार विचार, और वीतरागी को ही भगवान मानते हैं, वीतरागी ही गुरु हैं और वीतरागता ही धर्म है, ये सब साधर्मियों के प्रति, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, उन सब के प्रति अपने मन में कैसा भाव रखना? सद्भाव रखना। और कैसे रखना? स्वार्थ बस नहीं, अपेत कैद्वा, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग अपने साधर्मी से अनुराग रखते तो हैं, जब हमारा काम सकता है तब रखते हैं, जब हमारा स्वार्थ होता है, या कि दिखावटी भी हम वात्सल्य रख सकते हैं, तो कह रहे हैं दिखावटी भी नहीं, अपेत कैतवा, बिना किसी छल कपट के, ऐसा वात्सल्य और ऐसा प्रेम नहीं जो सिर्फ सतही हो, जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी हो, दिखावे वाला हो, कहते नहीं, अंतरंग से और बिना किसी स्वार्थ से निस्वार्थ प्रेम होना साधर्मी के प्रति। और फिर क्या करना? प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, जैसी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार उसकी सेवा शुश्रूषा करना। उसके ऊपर कार करना, इसको कहते हैं वात्सल्य। और ये होता है एक सम्यक दृष्टि के भीतर अपने सब साधर्मियों के प्रति, ये होना चाहिए। आज धीरे धीरे ये चीज घटती चली जाए, अपने साधर्मी अर्थात समान आचार व्यवहार वाले के प्रति हमारा उतना रुझान नहीं है, हमारा उतना सद्भाव नहीं है। क्यों कम होता चला, अगर हो है भी सद्भाव तो वो भी स्वार्थपूर्ण सद्भाव है। हमारा निस्वार्थ प्रेम, जैसे कि गाय और बछड़े के प्रेम का क्यों उदाहरण देना पड़ा, उस निस्वार्थ प्रेम को बताने के लिए। कभी किसी गाय ने अपने बछड़े से कोई अपेक्षा रखी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझे बाल्टी भर के पानी पिलाएगी? कभी उसने ये अपेक्षा रखी कि कभी बीमार हो जाऊंगी तब ये मेरी सेवा करे? नहीं, अपने बेटे से उसको कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है, ना ये संभव भी है। आपने कभी देखा हो कि बछड़ा बड़ा होकर के और माँ की सेवा करता मालूम पड़ता हो? नहीं, बड़ा हो जाता, जब तक दूध पीता है तब तक माँ उसकी सेवा करती रहती है, उसे दूध पिला के बड़ा करती। जिस दिन घास खाने लगता उस दिन माँ को भूल जाता, छोड़ देता। लेकिन माँ कभी इस बात के लिए दुखी नहीं होती। एक बेटे और माँ का उदाहरण क्यों नहीं दे दिया वात्सल्य के लिए? दे देते। माँ और बेटे के प्रति में के मन में भी तो बहुत वात्सल्य होता है, कि तिन्हें उसके पीछे भी थोड़ा बहुत स्वार्थ तो आ ही जाता है। लेकिन गाय और बछड़े के प्रेम का उदाहरण निस्वार्थ प्रेम के लिए दिया है। ऐसी प्रीति, ऐसा स्नेह कुरल काव्य में तिरुवल्लुवराचार्य ने लिखा है कि जीवन में जिसके वात्सल्य नहीं है वो तो एक सूखे हुए वृक्ष के समान है, नीरस तरु। जैसे सूखा हुआ वृक्ष खड़ा रहता है, बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है, लेकिन खोखला हो गया है, उसमें ना रस है और ना उसमें कोई पत्तियां फल फूल लगते हैं। ऐसा ही जिसके जीवन में वात्सल्य नहीं है उसका जीवन भी नीरस, शुष्क और वृक्ष के समान है। इतना बड़ा उदाहरण देना पड़ा। और फिर धीरे से बाद में कहते कि नीरस तरु कैसे गिरता है, धीरे धीरे उसको कीड़ा खाना शुरू करता है, घुन लग जाता उसमें और एक दिन नष्ट हो जाता। लेकिन जो सरस है, फलवान है, उसके साथ इस तरह की प्रक्रिया। इसलिए हमें साधर्मी के प्रति और वात्सल्य रखना चाहिए। ये उन्होंने उदाहरण दिया। आज अपन थोड़ा सा इस बारे में समझें, चार प्रकार का अनुराग होता है जिससे कि धर्म की प्रभावना होती है। आगे कल जब बैठेंगे अपन तो प्रभावना कैसे करनी चाहिए इस पे समझेंगे, पर वो आज भी उसी से जुड़ी हुई बात है। जब तक एक दूसरे के प्रति वात्सल्य और अनुराग नहीं होगा धर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता है। धर्म की प्रभावना के लिए वात्सल्य अंग जरूरी है, और उसमें चार प्रकार का अनुराग है, धर्मानुराग, भावानुराग, मध्यानुराग और मित्रानुराग। ये अपने साधर्मी के प्रति ऐसे चार प्रकार का अनुराग होना चाहिए। धर्मानुराग किसे कहेंगे? कहते धर्म में स्थिर रहना, कभी विपत्ति आने पर भी धर्म से विचलित नहीं होना, ये धर्मानुराग। जो हमारा आत्मधर्म है, जो हमारा वीतराग धर्म है, उसमें स्थिर बने रहना, और कभी विपत्ति आ जाए तो उस धर्म से विचलित नहीं होना, ये धर्मानुराग। लेकिन भावानुराग क्या है? कहते अपने धर्म और धर्मात्मा का सम्मान कब ना हो जाए, इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहे। मेरे धर्म का सम्मान कैसे कम होता है? जब मैं धर्म के विपरीत आचरण करता हूं तो अपने धर्म का अपने हाथ से सम्मान खो देता हूं। मैं रात्रि में भोजन करूंगा चार लोगों के सामने तो अपने धर्म की हंसी में अपने हाथ से करूंगा, और क्या? अपने धर्म के गौरव को, अपने धर्म के सम्मान को मैं अपने हाथ से कम कर रहा हूं। और उसमें कह रहे हैं कि भावानुराग वो है जो कि अपने धर्म और धर्मात्मा के गौरव को कभी कम नहीं होने देता, हमेशा धर्म और धर्मात्मा के सम्मान के लिए चिंतित रहता है कि उसका सम्मान कम ना, गौरव कम ना। क्या ऐसा भावानुराग हमारे मन में है अपने धर्म के प्रति, अपने धर्मात्मा के प्रति? एक व्यक्ति मिले थे मुझे बीना में, तो वो कहते थे महाराज कोई बुरा माने या अच्छा माने, मैं तो जो भी सामान इत्यादि खरीदता हूँ 2 रुपए ज्यादा भी मिले लेकिन मैं तो साधर्मी से खरीदता हूँ, कि मेरा पैसा साधर्मी के पास ही तो जा रहा, 2 रुपए ज्यादा ले लिया तो ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लेकिन वीतरागी के मार्ग पर चलने वाला मेरा सब साधर्मी, अहिंसा और सत्य में विश्वास रखने वाले को मैं कभी अपमानित नहीं होने दूंगा, मैं उसके सम्मान की रक्षा। क्या ऐसा हम अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलने वाले के प्रति मन में सम्मान का भाव रखते हैं, उसके सम्मान की कमी होने लगे? अभी तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे साधर्मी का सम्मान होने लगे तो हमें अपना अपमान जैसा मालूम पड़ने लगता है। देखो तो, जबकि होना यह चाहिए था कि साधर्मी का सम्मान हो अगर तो अपना अपना माथा और ऊंचा होना चाहिए कि मानो मेरा ही सम्मान हुआ मेरे साधर्मी का, और साधर्मी का अपमान होने लगे तो मानो मेरा ही अपमान हुआ है। साधर्मी का क्या हुआ, मेरा हुआ, मेरे धर्म का अपमान। ऐसा भाव मन के भीतर आता है जब दृष्टि निर्मल होती भैया, तो ये सब चीजें बहुत सहज हो जाती। अभी तो अपन को सुनकर के कि ये बड़ी अचरज वाली चीजें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है, अगर दृष्टि हमारी ऐसी हो जाए, श्रद्धा और आत्मविश्वास जागृत हो जाए, सच्चे रास्ते पर हम चलना शुरू कर दें, अपने जीवन को अच्छा बनाना शुरू कर दें, तो ये अच्छाई भी हमारे जीवन में है। ऐसे लोग जो कि अपने ही जीवन को नहीं, अपने साधर्मी के जीवन को भी, उसके सम्मान को कभी घटने नहीं देते। और मध्यानुराग कौन सा कहलाता है? कभी भी अपने साधर्मी को विपत्ति में छोड़ना होता है। कैसे? जैसे कि अस्थि मज्जा, बून और बून मैरो, हड्डी के भीतर एक लिक्विड होता है द्रव, जिसको मज्जा कहते हैं इंग्लिश में, उसको बून मैरो। हड्डी जब तक है तब तक उसके भीतर वो बून मैरो रहेगा, इसलिए आचार्यों ने अस्थि मज्जानुराग लिखा और उदाहरण दिया पांडव आदि वत्, जैसे पांडवों में जिसको अपन ब्लड रिलेशन कहें, ब्लड रिलेशन तो बहुत थोड़े लोगों से होंगे, अपने परिवारजनों से, लेकिन कह रहे हैं अपने साधर्मी से भी वैसा ही भाव जैसे अपने ब्लड रिलेशन होते हैं, उतना ही जैसे कि अस्थि और मज्जा का राग है, वैसा अनुराग की कभी भैया भले में तो सब साथ देते हैं, विपत्ति में, विपत्ति में उसके साथ साथ नहीं छोड़ना साधर्मी, ये कहलाएगा मज्जानुराग। पांडव आदि पर उदाहरण भी कैसा दे दिया, पांचों पांडव पर उपसर्ग हो गया और सब बैठे हैं, धू धू करके उनके ऊपर सिगड़ी जला दी गई अग्नि भर करके। तीनों भाई तो वृद्ध हो चुके थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, नकुल और सहदेव अभी युवा थे। तो नकुल और सहदेव के मन में क्या है, वो सोचते हैं कि अरे उपसर्ग किया कोई बात नहीं, मुनि हो गए थे सब, पांचों ध्यान में लीन है, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इससे तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मैं तो सहन कर लूंगा, अभी तो मैं युवा हूं, नकुल और सहदेव सोचते हैं। लेकिन इन बड़े भाई के प्रति तो जरा उनको अच्छा भाव रखना था जिसने उपसर्ग किया, ये कैसे सहन कर पाएंगे, हम तो अभी युवा हैं इसलिए सहन करें। उनकी चिंता करते हैं, विपत्ति आने पर अपनी विपत्ति तो सहन कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े भाई विपत्ति में हैं, उनकी विपत्ति कैसे दूर हो इसकी चिंता कर रहे हैं। और मजा देखना, तीनों भाई तो आत्म ध्यान में लीन रहे, कोई विकल्प नहीं आया मन में, सो तीनों को तो मोक्ष हो गया, और दोनों भाई जरा सा अनुराग मन में था सो मोक्ष नहीं जा पाए, सर्वार्थ सिद्धि तक ही गए, लेकिन आज भी उनका नाम हम गौरव से लेते, मोक्ष जाने वालों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उन मोक्ष जाने वालों के प्रति अनुराग रख करके और सर्वार्थ सिद्धि जाने वालों का भी अपन विशेष रूप से। और विष्णु कुमार मुनि महाराज का तो जब आएगा अवसर, तब उनके वात्सल्य से अपना पद छोड़ करके उन्होंने और रक्षा करी थी 700 मुनियों की, उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। ये कहलाता है मध्यानुराग, जिसमें कि हम अपने साधर्मी पर आने वाली विपत्ति में उसका साथ देते हैं। भले ही भैया किसी के अच्छे में साथ ना दो, लेकिन अपने साधर्मी पर आने वाले दुख में तो, जैसे अपन कहते ना कि भैया शादी ब्याह में जा पाए चाहे नहीं जा पाओ, लेकिन हाँ किसी के भी दुख में तो जरूर बिना बुलाए शामिल हो जाए। ये क्या भाव था, ये क्या परंपरा हमारी चली आई। कभी आपने देखा हो कि इनविटेशन देना पड़ता हो किसी के ऊपर दुख आ जाता है जब परिवार में, तो क्या बोला, अब भले ही आपके यहाँ चिट्ठी पत्री जाने लगी हो कि हमारे दुख है और आप पधारो, नहीं पहले तो अभी भी छोटे छोटे गांव में और बिना बुलाए दुख में शामिल होने की परंपरा, ये किस बात की सूचक है? यही कि मेरे साधर्मी की विपत्ति में मैं उसका साथ दूं, इससे हमारा धर्म ध्यान होता है, सोचो। और आखिरी में कह रहे मित्रानुराग, साधर्मी में भी जिनके प्रति बहुत प्रेम होता है, मित्रता होती, उनको वे अगर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो बार बार उन्हें समझा बुझाकर और सन्मार्ग पर लाने की फिक्र करना, ये कहलाता मित्रानुराग। है अपने मन में ऐसा, अपन तो अपने मित्रों को सिनेमा दिखाने ले जाएंगे, मंदिर कभी नहीं ले जाते बता। दुनिया भर के और कामों के लिए तो मित्र है, लेकिन मेरा मित्र संसार के रास्ते पर चले, ऐसी मित्रता कोई काम की मित्रता नहीं है। मेरा मित्र है इसलिए वह भी जो है मोक्ष मार्ग पर चले, सच्चाई के रास्ते पर चले, इस बात की निरंतर चिंता, इस बात की निरंतर भावना भाते रहना कि मैं अपने मित्र को भी कब समझा बुझाकर जैसे पुष्प डाल और वारिस है। उदाहरण है ये अपने यहां पर पद्मानी योग की कहानी तो महाराज जी सुनाएंगे पूरी, लेकिन हम तो संक्षेप में आपको बताए क्योंकि हमको कहानी वानी का अर्थ तो याद रहता है लेकिन वो नाम वाम भूल जाते हैं उसमें। वारिशेन और पुष्पडाल ने एक साथ दीक्षा ले ली थी, पुष्पडाल तो मित्र थे इसलिए ऐसे कह करके कि अगर आप ले लोगे तो मैं भी ले लूंगा, तो वारिशेन ने तो सचमुच में ली थी, उनको तो रहनी थी, तो पुष्पडाल को भी मजबूरी में क्या भैया कह दिया तो अपन भी ले, लेकिन फिर भी वारिशेन ने कैसे उनको संभाल करके वात्सल्य पूर्वक और अपने सच्चे मार्ग पर स्थित किया, ये जो है वात्सल्य के उदाहरण है। इससे हमें प्रेरणा लेकर के साधर्मी के प्रति ऐसा ही वात्सल्य अपने जीवन में रखना चाहिए। हम तो वात्सल्य के दिन अब एक और उदाहरण हमेशा सुनाने लगे हैं जो हमारे अपने जीवन में ही घटित हुआ, और हमेशा सेवा और उपकार के लिए अपन को अकेले वात्सल्य से नहीं काम चलेगा, वात्सल्य है तो फिर साथ में लिखना पड़ा आचार्य भगवंतों को प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, जितनी अपनी शक्ति उतनी साधर्मी की मदद करना, जैसी जैसी जिस तरह की बने, धन पैसे से बने, धन पैसा नहीं है तो शरीर से कर सको तो कर सको, जैसी बने, ऐसा नहीं है कि सब मदद दूसरे साधर्मी की धन पैसे से ही होगी, हम उसके लिए निश्चिंतता दे सकें ये भी बहुत बड़ी चीज है। जैसा बने वैसा उपकार करना, यथा योग्यम लिख दिया, अपनी जैसी सामर्थ्य हो, तन मन और धन तीनों, तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, मन से तो कर ही सकते हैं। शाम को बैठ करके प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाने में कौन सा पैसा लगा, कौन सी मेहनत लगती, कौन सा पहलवानी तो चाहिए नहीं। आचार्य हमेशा कहते हैं कि 5 मिनट बैठ के साधर्मी और साधर्मी क्या, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाने में तो कुछ भी मेहनत का काम नहीं। कैसी भावना भाना, सत्वेशु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम विष्टेशु जीवेशु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा महात्मा, सबसे मेरी मित्रता है, गुणी जनों के प्रति मेरे मन में हर्ष का भाव रहे, दीन दुखी पर मेरा करुणा का भाव रहे, और माध्यस्थ जो गलत रास्ते पर चल रहे उनसे मेरा राग द्वेष न रहे बल्कि उनको भी सन्मार्ग में लगाने का मेरा हमेशा भाव, ऐसे भाव बनाए रखें। वो जो उदाहरण मैं आपसे कह रहा था 1900 या 2000 की बात है, पूरा 1999 में तो मंडी में मरा था, उसके बाद में शाहपुर पहुंचा और वहां पर बहुत अधिक अस्वस्थता हो गई और चतुर्मास की स्थापना का समय आ गया, 2-3 दिन बाकी रह गए थे और अत्यंत अस्वस्थता होने पर, और महाराज जो अभी हमारे साथ नहीं है, महाराज का चतुर्मास अपने गुरुजी के साथ हमसे 20 किलोमीटर दूर था, गढ़ाकोटा में, हम शाहपुर में थे, 17 किलोमीटर की दूरी, 17-18, और 20-20 किलोमीटर की सीमा तो रख ही लेते, वो 20 किलोमीटर की सीमा कब काम आती है ये भी इसी से मालूम पड़ जाएगा अपन को। आपने जैसे सुना होगा चतुर्मास स्थापना की, 20-20 काय को रख ली, 20-20 क्या आवश्यकता, कहीं जाना तो है नहीं, लेकिन कभी ऐसा अवसर आ जाता है, वो अवसर उस समय आया और जैसे ही महाराज को मालूम पड़ा कि मैं अस्वस्थ हूं तो अपने चतुर्मास की स्थापना करने के 2 दिन बाद उपवास होने के बावजूद भी 18 किलोमीटर चल करके आए, और एक हफ्ते रुक करके मेरे चतुर्मास की स्थापना भी करवाई। मैं अपने चतुर्मास की स्थापना करूं सो तो मुझे अनिवार्य है उपवास करना, लेकिन मेरे साथ स्वयं भी उपवास किया। ये साधर्मी के प्रति वात्सल्य का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए भाई ऐसा अपने को साधर्मी के प्रति हमेशा प्रेम भाव और वात्सल्य भाव रख करके अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए अपन कर रहे हैं, तो अपने जीवन अच्छा बनाने से दूसरे का जीवन तो अपने आप अच्छा बन जाता, और या कि दूसरे का जीवन अच्छा बनाने की भावना बनाएं तो अपना जीवन अच्छा बन जाता। आचार्य महाराज इसका उदाहरण हमेशा दिया करते कि पानी और दूध का जैसे संबंध है ऐसा साधर्मी से होना चाहिए है। वो उदाहरण देते कि दूध में उफान आने लगता, अग्नि उसमें उफान लाती है, तो उसमें जो पानी है वो जलने लगता। पानी पहले जलता कि आप दूध का बिगाड़ नहीं कर सकते, मैं जल जल के भी अपने इस दूध की रक्षा करूंगा। और फिर बाद में कोई देख लेता है कि ये तोफन करके पूरा, और दूध भी अपने साधर्मी की रक्षा के लिए उफनता है अग्नि को बुझाने के लिए। ऐसा उदाहरण दिया आचार्य, दूध में पानी जल जल के, और कहता कि मैं जल जाऊंगा लेकिन इसको उफनने नहीं दूंगा, लेकिन वो कहता कि मेरे मित्र को तुम जला रहे हो अग्नि से, मैं तुम्हें बुझा के रहूं। वो उफनता दूध, और फिर दूध गर्म करने, अब उदाहरण है ऐसा प्रतीक ले लो अपन, तो उदाहरण में फिर वो कहते कि जो दूध को गर्म करने वाला है वो भी कम नहीं है। वो कहता अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे मित्र को ये जला रहा है, मैं थोड़ा और तुम्हें अपने मित्र से मिलवा देता हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल देता है तो अपने आप दूध शांत हो जाता है, हाँ फिर ठीक। ये इस तरह अपने जीवन में हम चाहें तो अपने साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य अपने जीवन में ला सकते हैं। दूसरे का भला करना मानो अपना ही भला करना है, ऐसी भावना अपने जीवन में आ जावे। इसी भावना के साथ वड़ी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुरुवर शाश्वत
कीर्तन करोगे किलनों वाली कविता है वो आप सुना दें क्या है महाराज जी, फिर बाद में फिर आप उड़ जाते हैं। ये महाराज जी ने आपके बारे में क्या कहा है?
कविता भी जो है वो एक उपदेश है, उपदेश की एक पद्धति है, इसलिए उसको आप उसी रूप में लें। मैंने कई बार कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करें, मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करें, इस तरह लिखना कहाँ दिखता है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है, और फिर सफेद पर काला लिखना ठीक भी तो नहीं लगता, और फिर सफेद पर काला लिखना ठीक भी तो नहीं लगता, सफेद पर सफेद ही लिखा जाता है, तब जितना भी लिखो कागज एकदम सफेद रहा। मैंने तो कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करे, इस तरह लिखना कहां लिखता है। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूं कि किससे कहूं, कहीं तो नहीं जाना। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूं कि किससे कहूं, कहीं तो नहीं जाना है, इस बार मुझे अपने से चलकर अपने तक आना है। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं। उसने कुछ नहीं जोड़ा, लोग तो बताते हैं कि पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं। उसने कुछ नहीं जोड़ा। लोग तो बताते हैं पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। जिंदगी भर अपना सब सबको देता रहा, जिंदगी भर अपना सब सबको देता रहा और दे देकर सबको जोड़ता रहा। लोग कहते हैं उसने कुछ नहीं जोड़ा। इतनी याद आ रही है, उत्ती सुना रहा हूँ। वो एक पुस्तक में से मैंने इतनी सुना दी जो उसमें थी। और यहां आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है, यहां आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है पर रहते रहते बहुत छोटा लगने लगता है। यहां आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है पर रहते रहते बहुत छोटा लगने लगता है। फिर मजबूरन आदमी को एक घर और बनाना पड़ता है, फिर मजबूरन आदमी को एक घर और बनाना पड़ता है। आदमी वही रहता है, घर बदल जाता है। पहले यहां आदमी अपने मन का एक घर बनाता है। हम एक बार दीवार बन रही थी घर की, तो वो देख रहे थे दीवार पहले आधी उठा दी जाती जैसे ये बनी है फिर खिड़की लगाते हैं उसमें, तो वो देख करके मुझे लगा संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं, संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं फिर उसमें खिड़की लगाते हैं। संबंधों के बीच एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं फिर बाद में खिड़की लगाते हैं, तब जिंदगी भर करीब रहकर भी हम खुलकर कहां मिल पाते हैं। खिड़की में से उतना ही संबंध है जाता। एक उड़ते पखेरू ने मुझे निरंतर उड़ते रहने को कहा, एक उड़ते पखेरू ने मुझे निरंतर उड़ते रहने को कहा, एक पेड़ ने तूफानों के बीच अडिग खड़े रहने को कहा, एक पेड़ ने तूफानों के बीच अडिग खड़े रहने को कहा, और एक नदी मुझे निरंतर बहते रहने को कह गई, और एक नदी मुझे निरंतर बहते रहने को कह गई। सूरज ने सुबह आकर कहा दिन भर रोशनी देते रहना, सूरज ने सुबह आकर मुझसे कहा कि दिन भर रोशनी देते रहना, चांद सितारों ने रात भर अंधेरे से जूझने को कहा, और एक नीली झील मुझे बाहर भीतर एक सा होने को कह गई, और एक नीली झील मुझे बाहर भीतर एक सा होने को कह गई। सागर ने धीरे से लहरा कर कहा सीमाओं में रहना, सागर ने धीरे से लहरा कर कहा सीमाओं में रहना, आकाश ने अपने को अपने में सबको समा कर कहा असीम होना, आकाश ने सब अपने में सबको समा कर कहा असीम होना, और एक नन्ही बदली प्रेम से भरकर मुझे निरंतर बरसते रहने को कह गई, मेरी जिंदगी इस तरह मेरी ना होकर सबकी हो। सबको छोड़कर मैं अपने को खोजने निकला, सबको छोड़कर मैं अपने को खोजने निकला। लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा, लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा। मेरा रास्ते पर निश्चल निरावर चलना लोगों को पागलपन लगा, मेरा रास्ते पर निश्चल निरावर चलना लोगों को पागलपन लगा। मेरे सर्व प्रेम और सर्व मैत्री को लोगों ने वासना और अहंकार कहा, मेरी सरलता और कोमलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मखौल उड़ाया, मेरी सरलता और कोमलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मखौल उड़ाया। मैं चुप रहा और चुपचाप चलता रहा, चलते चलते अपने में खो गया नहीं रहा, चलते चलते अपने में खो गया नहीं रहा, तब से लोगों ने मुझे देवता कहा, तब से फिर लोगों ने मुझे देवता कहा। अब मैं उनका बनाया पत्थर का देवता हूं और मुस्कुराता हूं ये सोचकर कि जीते जी मुझ आदमी में जो देवत्व किसी ने नहीं देखा वो आज मेरी प्रतिमा में कैसे देख। ऐसा होता है। माना कि हम में भगवान बनने की ताकत है, माना कि हम में भगवान बनने की ताकत है, पर इस बात पर हम इतना अकड़ते क्यों? माना कि हम में भगवान बनने की ताकत है पर अब इस बात पर हम इतना अकड़ते क्यों हो? वो तो चींटी में भी है, पर इस बात पर हम इतना अकड़ते क्यों हैं? वो तो चींटी में भी है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं, हूबहू होने का है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं, हूबहू होने का है। स्वयं को भगवान मानने मनवाने का नहीं, स्वयं भगवान बन जाने का। स्वयं को भगवान मानने मनवाने का नहीं, स्वयं भगवान बन जाने का है। हम अपने को जरा ऊंचा उठाएं, हम अपने को जरा ऊंचा उठाएं। इस बार ना सही भगवान, कम से कम एक बेहतर इंसान तो बनो। ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर, ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर, ये मूर्तियां अनुपम सुंदर इसलिए कि पा सकें कोई रूप हम अपना ही अनुत्तर, और श्रद्धा से झुककर गलाते जाएं अपना मान मत परत दर परत निरंतर, और झुक श्रद्धा से झुककर गलाते जाएं अपना मान मत परत दर परत निरंतर, ताकि कम होता जाए हमारे और प्रभु के बीच का ये मंदिर इसलिए कि हम मौत ने आके उससे पूछा कि मेरे आने से पहले वो क्या करता रहा। मौत ने आकर उससे पूछा कि मेरे आने से पहले वो क्या करता रहा। उसने कहा, आपके स्वागत में पूरे होश और जोश से जीता रहा। उसने कहा कि आपके स्वागत में पूरे होश और जोश से जीता रहा। सुना है मौत ने उसे आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, अच्छा जियो, अलविदा। अब कैसे मारे हैं ऐसे व्यक्ति को? मारे क्या? एक वो हैं जो ये सोच के जी रहे हैं, एक वे हैं जो ये सोच के जी रहे हैं कि एक दिन तो मरने का तय है, अगर आज अभी तो आज अभी ठाट से जियो। एक वे हैं जो ये सोच के जी रहे हैं कि एक दिन मरने का तय है तो आज अभी ठाट से जियो। एक तुम हो जो ये सोच के मर रहे हो कि आज भी यदि मौत आई है तो शान से मरो, और एक तुम हो जो कि ये शान से मरो। अरे ये तो हम हैं जो इस सोच में न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं कि वे क्यों शान से मर रहे हैं और वे क्यों ठाट से जी रहे हैं। ट्रेडिक्शन है। मुझे मौत में, मैंने पहली बार, क्योंकि मेरे अपने जीवन में कभी मरघट जाने का तो अवसर नहीं मिला, छोटे बच्चों को ले जाया नहीं जाता था क्योंकि विरक्त हो जाएंगे देख करके, मैंने पहली बार 1986 में, और मरघट के पास ही जंगल था, तो वहाँ से जब मैं लौट रहा था तो एक शव यात्रा वहाँ आई। मैं फिर रुक गया वहीं पर, 10 मिनट टेकरी पर खड़े होकर देखता रहा कि कैसे लोगों ने उसको उतारा और कैसे आग लगाई जलाया, और फिर धीरे धीरे करके जो भीड़ थी वो वापस लौटती चली गई। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, अभी मुरझाना टूट कर गिरना और अभी खिल जाना है। कल यहाँ आया था कौन कितना रहा, इससे क्या मुझे अभी लौट जाना है। कल यहाँ आया था कौन कितना रहा, इससे क्या मुझे अभी लौट जाना है। मेरे जाने के बाद लोग आए अर्थी थामे कंधे बदले, मेरे जाने के बाद लोग आए अर्थी संभालें कंधे बदलें, इससे पहले मुझे खुद संभलना और बदल जाना, इससे पहले मुझे खुद संभलना और बदल जाना है। लोग आए मेरी जली देह की राख उठाएं उसे कहीं सिराएं, लोग आए मेरी जली देह की राख उठाएं उसे कहीं सिराएं, इससे पहले मुझे अपने अहंकार को जलाना, अपने को अपने में सिराना डुबाना है और ऊंचे उठना है। मौत आए और जाने कब आए, पर अभी तो मुझे रोज रोज जीना और रोज रोज मरना है, मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है। ये उस समय की है जबकि मैंने मृत्यु को बहुत निकट से अनुभव किया। हाँ, और जब कोई बहुत अधिक किस तरह की स्थिति से गुजरता है, फिर दूसरे दिन आहार के बाद आकर के मैं अपने काम में लग गया, तो लोगों ने कहा बस यही आपके साथ मुश्किल है, जरा सा भी विश्राम नहीं करते आप और दिन भर लगे रहते हैं, अभी आप अस्वस्थ थे और कल ऐसी मुश्किल थी कि प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे और आज आप फिर काम में जुट गए, जरा विश्राम करिए। मैंने कहा अब तो नहीं करूँगा, कल जब मृत्यु निकट थी तब किसने हाथ लगा लिया था, तब फिर तो मुझे ही अपने जीवन को जैसा बनाना है वैसा बनाऊं। उस समय की ये लिखी हुई है, वो तो दो लाइनें लिखी थी उस समय, तो फिर उसको एलाबोरेट किया, जैसे अपन कहते ना कि कोई किसी का नहीं है, उस समय वही लिखा था कांपते हाथों से जब 105-6 बुखार था, कि अभी तक तो कहता था कि कोई किसी का नहीं है, आज अनुभव किया कि कोई किसी का हो कैसे सकता है, क्योंकि अपनी अपनी मृत्यु के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मौत में सुन रहा हूं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की आवाज, मौत में सुन रहा हूं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की आवाज, कितना मधुर है मेरे द्वार पर आकर तुम्हारा मुझे पुकारने का अंदाज कि चलो, कितना मधुर है मेरे द्वार पर आकर तुम्हारा मुझे पुकारने का अंदाज कि चलो, ऐसा लगता है मानो कहीं दूर बज रहा हो कोई सुरीला साज कि चलो, और तुम्हारा खुद इस तरह चलकर मेरे करीब आना और अपने हाथों मेरे बंद पिंजरे का द्वार खोलना मुझे मुक्त करना, कितना अच्छा लग रहा है आज। मौत में सुन रहा हूं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की आवाज, अपने घर मान सरोवर पर लौटता मेरा मानस हंस तुम्हें प्रणाम करता है आज आखिरी बार, मौत में सुन रहा हूं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की आवाज। अब कितनी देर वो मेरी हैबिट में वो जा नहीं सकता। हाँ वो तो नए में ही हैं, वो उसमें चिड़िया वाली थी एक और मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रही। हाँ दो छोटी छोटी कविताएं वो याद आ गई उस वाले संग्रह में से जो अपन सोचे, हाँ वो याद है, वही दोनों याद है। क्या होता है कि कभी हमें अपेक्षा नहीं होती जहां से दुख मिलने की, वहां से जब दुख मिलता है क्या होता है, व्यक्ति दुख कम से कम मिले इसके लिए तो अपने संबंध बनाता है कि ये हमारा अपना व्यक्ति है, इससे तो नहीं कुछ हमें भय नहीं है, इससे तो ये तो हमारी बात सब समझेगा। पर ऐसी स्थिति में भी जिसको हम अपना मानते हैं वहां से भी जब दुख मिलता है तब कैसा लगता है, उछालो पत्थर और तोड़ दो दर्पण, उछालो पत्थर और तोड़ दो दर्पण, पर दर्पण तोड़ने से पहले इतना जरूर देख लेना कि कहीं दर्पण में बना तुम्हारा प्रतिबिंब ना टूट जाए। ऐसा होता है, एक प्रतिक्रिया ये थी, दूसरी प्रतिक्रिया ये थी, मैं तो लोगों के लिए सीढ़ी हूं, मैं तो लोगों के लिए सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊंचे पहुंचना है, मैं तो लोगों के लिए सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊपर पहुंचना है, तब सीढ़ी का क्या अधिकार कि वो सोचे कि कौन उस पर धीरे से पैर रख कर गया और कौन उसे रौंदता चला गया। मैं तो सिर्फ एक सीढ़ी हूँ जिस पर पैर रखकर लोगों को ऊपर पहुंचना है। भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा। भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा। उसने मुस्कुरा कर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। जिंदगी में तब पहली बार मुझे लगा कि जितना जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा। बाकी तो बड़ा है ही। मैंने पूछा चिड़िया से कि आकाश असीम है, उसे अपने खोने का भय नहीं लगता। चिड़िया कहती है वो अपने घर लौटने का रास्ता जानती है। डरे वे जो अपने घर लौटने का रास्ता नहीं जानते, वो भटक जाते हैं। मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो। आकाश कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। जब मैंने आकाश से कहा कि तुम बहुत ऊंचे हो तो आकाश कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। फिर मैंने सागर से कहा कि अरे तुम बहुत गहरे हो। सागर मुझसे कहता है कि तुम और अधिक गहरे हो। मैंने सूरज के सामने माथा झुकाया और कहा कि सचमुच सूरज तुम बहुत तेजस्वी हो। सूरज कहता है तुम मुझसे भी कई गुने तेजस्वी हो। फिर मैंने आदमी से कहा कि तुम महान हो। आदमी कहता है तुम ठीक कहते हो। अपने ही बच्चों को डराने धमकाने, मैंने कुछ डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे। बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे फिर असलियत जानकर हंसते रहे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे चेहरे लगाकर मुझे ही डरवा रहे हैं। सबके बच्चे डरवाते हैं बड़े। मैं जब सिलवानी में था, एक गांव है, तो वहाँ 10-12 दिन रहा। वहाँ पर एक कोई का मकान बन रहा था। एक दिन बहुत तेजी तेजी से आवाज़ आने लगी तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ। तो बोले उनका मकान बन रहा। मैंने कहा अभी बन रहा क्या? बोले नहीं, वो तो जब आप उसके पहले से बन रहा। मैंने कहा फिर भी बहुत तेज तेज आवाज़ आई। तो आकर के उनने बताया कि वो एक दीवार टेढ़ी हो गई थी तो वो तोड़ रहे हैं उसको। तब फिर मैंने 4 लाइन लिख दी कि बनता चुपचाप है टूटता आवाज के साथ। जब जब भी कंस्ट्रक्शन होगा बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। जिंदगी के दौर में जाने क्यों, अब आवाज ही आवाज। इसका मतलब है कि बन नहीं रहा कंस्ट्रक्शन। मैं नई वाली कविताओं में उसे सुनाई दे रहा हूँ तो फिर ये लोग पढ़ेंगे क्या उनकी कविताएं। बच्चों की एक कविता मैंने कल भी सुनाई थी, वो आज भी सुना देता हूँ। बच्चे खेलते हैं गली में खेल, रेल रेल खेलते हैं बच्चे। बच्चे खेलते हैं गली में खेल, रेल रेल, बच्चे इंजन बन जाते हैं, बच्चे डिब्बे बन जाते हैं, पकड़ लेते हैं पीछे से एक दूसरे की कमीज, चल पड़ती है रेल गली के एक छोर से दूसरे छोर, चल पड़ती है रेल गली के एक छोर से दूसरे छोर, कोई डिब्बे से उतरने चढ़ने में धक्का मुक्की नहीं करता, कोई डिब्बे से उतरने चढ़ने में धक्का मुक्की नहीं करता, जहां मन आता है रेल रुक जाती है, किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, जहां मन आता है रेल रुक जाती है, किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, चलती रहती है रेल यात्रा का मजा यही है खेल, चलती रहती है रेल यात्रा का मजा यही है खेल, इंजन धुआं नहीं छोड़ता पर्यावरण सुरक्षित रहता है, इंजन धुआं नहीं छोड़ता पर्यावरण सुरक्षित रहता है, गार्ड झंडी देता है सिग्नल मैन सिग्नल, न लेट होने की समस्या न दुर्घटना का भय, बिजली चली जाए तो चली जाए अपनी बला से, बिजली चली जाए तो चली जाए अपनी बला से, चक्का जाम नहीं होता बच्चों की रेल का, चक्का जाम नहीं होता बच्चों की रेल का, लोग हंसें तो हंसते रहें देखकर बच्चों की रेल, लोग हंसें तो हंसते रहें देखकर बच्चों की रेल, पर बच्चे खुश हैं उनके बीच नहीं है तनाव, बे नहीं है बड़े बड़ों की तरह बेमेल, बच्चे कहते हैं गली में खेल रेल रेल, है ना, वापस में मिल जाते, मुझे कहना तो इतना ही था। जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा, जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा, देखो इसमें अपनी रोनी सूरत कैसी तो लगती है, जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा, देखो तो अपनी रोनी सूरत इसमें कैसी लगती है, अंधे के ही शीशा मैं सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगती, अंधे के ही शीशा मैं सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगता, एक बार रोई थी माँ भी नानी के मरने पर, एक बार रोई थी माँ भी नानी के मरने पर, फिर मरते दम तक माँ को मैंने भीतर तक हंसते कभी नहीं, फिर मरते दम तक माँ को मैंने भीतर तक हंसते कभी नहीं देखा, माँ के जीवन में शायद शीशा देने वाला अब कोई नहीं, माँ के जीवन में शायद अब शीशा देने वाला कोई नहीं, सबके जीवन में ऐसे ही खो जाता होगा कोई शीशा देने वाला, जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा, आपको लंबी वाली कविता सुनाएंगे अपराध बोध वाली, वो याद नहीं आ रही पूरी पंक्तियां, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया, चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था, चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, चिड़िया ने रोज एक गीत गाया नया ऐसा जो धरती आकाश सब में समाया, चिड़िया ने रोज गाया एक गीत नया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया, चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया, चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। घर में आती थी मिठाई हम सबकी नजर बजा कर माँ रख देती थी उसे छिपा कर, घर में आती थी मिठाई हम सबकी नजर बचा कर माँ रख देती थी उसे छिपा कर, ढूंढा करते थे हम सब मिलकर ढूंढ ढूंढ कर थक कर, फिर करते थे माँ की खुशामद बड़े प्यार से कहते थे हमें मिठाई देव माँ देव न माँ, हमें मिठाई देव देव न माँ, माँ कहती थी देंगे देंगे पहले सब बैठो भगवान बैठे हैं जैसे, माँ कहती थी देंगे पहले सब बैठो ऐसे भगवान बैठे हैं जैसे, बैठ जाते थे हम सब चुपचाप हाथ पर हाथ रखे भगवान जैसे बनकर, बैठ जाते थे हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखे भगवान जैसे बचकर, पर बीच में देख लेते थे बार बार आंख खोल कर, पर बीच में देख लेते थे बार बार आंख खोल कर। मां कहती थी नाना ऐसे नहीं, आंखें बंद करो सब। मां कहती थी ऐसे नहीं, आंखें बंद करो सब। और रख देती थी मिठाई हमारे हाथ पर, हम खाते खुश होते, भागे भागे फिरते यहां पर वहां पर। आज याद आती है याद दुनिया के बीच और की होड़ में फंस कर, आज आती है याद दुनिया के बीच और पाने की होड़ में फंस कर, कि माँ ने तो बचपन में ही बता दिया था कि मिलता है जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, दुनिया भर के राग द्वेष से भेदभाव से आंख बंद कर लेने। बचपन में ही बता दिया था मिलता है जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, दुनिया भर के राग द्वेष से भेदभाव से आंख बंद कर लेने पर, भगवत सम संभाव सभी पर रखने पर। और जो कविता मैं हमेशा आखिरी में सुनाता हूं, मतलब बचने का अच्छा तरीका मैंने ये कविता पता नहीं कब कैसे लिखी, पर मुझे लगता है कि आप उसको ठीक समझ पाएंगे। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, तब मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगने लगता है। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो। मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है। पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है, वरना किसी का भी घर यहां अपना घर कहां होता है। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, तो मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है।
जो गति है मेरी नियति है, जो गति है मेरी।
है ठीक मुझसा ही मुझे करता वो देवता जो जो किसा मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा।